ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वे अगले दो दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली भाजपा ने आज पार्टी के झुग्गी विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी के 256 बड़े झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में सहभोज का आयोजन किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT से चलने वाली बसों के लिए नया स्टैंड शुल्क लागू हुआ। संशोधित शुल्क केवल फास्टैग आधारित प्रणाली के माध्यम से वसूला जाएगा। जनजातीय संस्कृति, व्यंजन, वाणिज्य और शिल्प कौशल की भावना का उत्सव आदि बाजार आज से नई दिल्ली में शुरू। और दिल्ली पुलिस के विशेष दल ने दो लोगों को मादक पदार्थ तस्करी मामले में गिरफ्तार किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वे अगले दो दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में अगले मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय लेने के लिए आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक होगी। श्री केजरीवाल ने मांग की कि अगले वर्ष फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव इस वर्ष नवम्बर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएं। दिल्ली में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि जब तक लोग अपना फैसला नहीं सुनाएंगे वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे।
मैंने जैसे बताया दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले दो तीन दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा।
वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने श्री केजरीवाल से सवाल किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए दो दिन का समय क्यों चाहिए। श्री सचदेवा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की ईमानदारी के दावे खोखले हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में शामिल नहीं है तो दिल्ली आबकारी नीति को क्यों वापस लिया गया। श्री सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है।
दो दिन का समय क्यों चाहिए केजरीवाल? दो दिनों में क्या करना चाहते हैं? और दिल्ली की जनता तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है। आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे और हो जाए चुनाव। दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार से आजीज आ चुकी है और दिल्ली की जनता निजात चाहती है आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन से।
इस मामले पर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि केजरीवाल अगर पहले ही इस्तीफा दे देते तो बारिश के मौसम में दिल्ली की जनता को ये दिन नहीं देखना पड़ता।
अगर यही इस्तीफा आज से छह महीने पहले ये देते तो शायद दिल्ली की जनता जो त्राहिमाम पानी के लिए कर रही थी या जब दिल्ली की जनता डूब रही थी, अगर सरकार में कोई मुख्यमंत्री होता, फैसला लेने वाला व्यक्ति होता तो शायद दिल्ली को ये दिन देखने के नहीं पड़ते।
उधर मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे से जुड़ी सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि श्री केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि अगर वे ईमानदार हैं तभी जनता उन्हें वोट दे।
तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुझे जमानत देके राहत दी है, मगर जो जनता की अदालत है मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। पूरी दुनिया के इतिहास में इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इस्तीफा देके कह रहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना वरना मुझे वोट मत देना।
दिल्ली भाजपा ने आज पार्टी के झुग्गी विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी के 256 बड़े झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों में सहभोज का आयोजन किया। इस अवसर पर भाजपा के सदस्य बने झुग्गी वासियों का अभिनंदन किया गया और बच्चों को किताबें और कॉपियां वितरित की गईं। इस कार्यक्रम में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, बांसुरी स्वराज, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री बिधूड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के माध्यम से झुग्गीवासियों की समस्याओं का समाधान कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT से चलने वाली बसों के लिए नया स्टैंड शुल्क लागू हो गया है। राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि संशोधित शुल्क केवल फास्टैग आधारित प्रणाली के माध्यम से वसूला जाएगा और बिना फास्टैग के किसी भी बस को टर्मिनल परिसर में प्रवेश करने और परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नया स्टैंड शुल्क कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सरायकाले खां स्थित अंतर्राज्यीय बस अड्डे से चलने वाली सभी बसों पर लागू होगा। जिन बस संचालकों ने फास्टैग नहीं लिया है उन्हें इन अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल परिसर में जगह नहीं मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकती हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली पुलिस के विशेष दल ने दो लोगों को मादक पदार्थ तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तस्करों के पास से 20 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल से मादक पदार्थ दिल्ली तस्करी के लिए लेकर आए थे, जहां गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। दिल्ली नगर निगम कल से इस महीने की 30 तारीख तक नजफगढ़ जोन में स्वच्छता सैनिकों के सम्मान में स्वच्छता क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहा है। इस लीग का उद्देश्य शहर को साफ रखने वाले स्वच्छता कर्मियों के कार्यों का सम्मान करना है। इस लीग में केवल स्वच्छता कर्मी ही भाग ले सकेंगे। इसका आयोजन स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना भी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के आधार पर जनता ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। श्री प्रधान ने आज पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में काम किया है। उन्होंने कहा कि चाहे राज्य का आर्थिक विकास हो या राज्य के वंचित वर्ग का, सरकार ने हर क्षेत्र में कार्य किया है। श्री प्रधान ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में उत्पादित फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगा। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन आज कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाषा संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। कल हिंदी दिवस पर गृहमंत्री श्री अमित शाह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। दिल्ली के लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में आज एक जूता फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग के अनुसार उन्हें इस दुर्घटना की सूचना दोपहर 12:19 पर प्राप्त हुई। विभाग ने बताया कि आग बुझाने के लिए 19 अग्निशमन वाहनों को मौके पर भेजा गया है और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन संस्करण का आज समापन हो गया। इस बार मौसमी फूल और पौधे आकर्षण का केंद्र बने, जिनमें बॉन्जाई गार्डन, रोज गार्डन, सेंट्रल लॉन में विशेष किस्म के फूल आदि शामिल रहे। उद्यान में बच्चों के लिए ट्री हाउस, बाल वाटिका और शिक्षण कक्ष जैसी कई व्यवस्थाएं भी की गई थी। इस बार उद्यान में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर केवल स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक और छात्र उद्यान में भ्रमण करने के लिए पहुंचे। इस बार बच्चों को अमृत उद्यान की भावना से जोड़ने के लिए स्कूली बच्चों को बटन बैज भी दिए गए। इसके अलावा अमृत उद्यान में आने वाले आगंतुकों को अद्वितीय और पर्यावरण अनुकूल बीजपत्र स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण की शुरुआत पिछले महीने की 16 तारीख से हुई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। जनजातीय संस्कृति, व्यंजन, वाणिज्य और शिल्प कौशल की भावना का उत्सव आदि बाजार आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हिस्सों से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े और आभूषणों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आदि बाजार के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को एक आकर्षक मंच मिल रहा है। बाजार में लगभग 12 राज्यों के 36 शिल्पकारों के स्टॉल लगे हैं, जिनमें जंगली शहद से लेकर हस्तनिर्मित साबुन, हाथ से बुनी गुड़िया और आभूषण तक शामिल है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने बताया, बाजार पूरे भारत से अनूठे उत्पादों को एक ही स्थान पर लाने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए आदि बाजार में असम से आए हुए एक स्टॉल मालिक जिलमिल सरानिया ने कहा,
नमस्कार, मेरा नाम जिलमिल सरानिया है और मैं असम से हूँ और हम यहाँ पे ट्राइफेड के साथ लगे हुए हैं। हम लोग फॉरेस्ट के क्लस्टर ग्रुप है, उसमें हम ट्राइब्स लोग कलेक्टिवली हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे प्रोड्यूस है वो सब हम फार्मर से डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग करके जगह जगह पर अवेयरनेस दे रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के हस्तनिर्मित साबुन और शैम्पू निर्माता गफूर मोहम्मद ने आकाशवाणी को बताया,
हेलो नमस्कार जी, मेरा नाम गफूर मोहम्मद है, मैं चंबा हिमाचल से आया हूं और मैं यहां पे अलग अलग तरह की साबुने लेके आया हूं और शैम्पू है और हेयर ऑयल है।
आदि बाजार इस महीने की 19 तारीख तक चलेगा और इसमें प्रवेश बिल्कुल निशुल्क है। आगंतुक सुबह 11 बजे से रात 8 बजे के बीच नई दिल्ली के मंडी हाउस में आगा खान हॉल में बाजार का दौरा कर सकते हैं। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर, आकाशवाणी दिल्ली।
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। शहर के जाकिर कॉलोनी क्षेत्र में कल एक 3 मंजिला इमारत ढह गई थी। राहत और बचाव कार्य आज सुबह पूरा हो गया और मलबा हटा दिया गया है। 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि घटना के समय इमारत में 15 लोग थे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल सहित राहत दल पूरी रात मलबा हटाने में लगा रहा। दूरदर्शन आज 65वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन से हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने इसके पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। अपने विशाल नेटवर्क के बूते दूरदर्शन आज भारत का सबसे बड़ा प्रसारक है, जिसकी पहुंच ग्रामीण दर्शकों तक है। दूरदर्शन के 6 राष्ट्रीय और 22 क्षेत्रीय चैनलों से 2400 घंटे प्रसारण होता है। दूरदर्शन का एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी है। दूरदर्शन की निशुल्क डीटीएच सेवा भी उपलब्ध कराता है। दूरदर्शन जागरूकता प्रसार का माध्यम रहा है। इसके चर्चित कार्यक्रमों में रामायण, महाभारत, हम लोग, बुनियाद, मालगुड़ी डेज और उड़ान शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर देश के सभी नागरिकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन को मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगम्बर मोहम्मद सभी को प्रेम और भाईचारे की भावना तथा समाज में समानता और सद्भाव के साथ रहने का संदेश देते हैं। राजधानी दिल्ली में आज ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। चौथा ग्लोबल जैव इंडिया 2024 सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसमें जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय कौशल का प्रदर्शन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वे अगले 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली भाजपा ने आज पार्टी के झुग्गी विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी के 256 बड़े झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में सहभोज का आयोजन किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT से चलने वाली बसों के लिए नया स्टैंड शुल्क लागू हुआ। संशोधित शुल्क केवल फास्टैग आधारित प्रणाली के माध्यम से वसूला जाएगा। जनजातीय संस्कृति, व्यंजन, वाणिज्य और शिल्प कौशल की भावना का उत्सव आदि बाजार आज से नई दिल्ली में शुरू। और दिल्ली पुलिस के विशेष दल ने 2 लोगों को मादक पदार्थ तस्करी मामले में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।